लेव व्यवस्था अध्याय 14। अध्याय 14 को वो बड़े आकर्षक शब्दों में आरंभ करता है। कोढ़ी के शुद्ध ठहराने की व्यवस्था ये है, लेव व्यवस्था 14:1-2 पद। परमेश्वर ने व्यवस्था में अपनी दया का स्थान मनुष्यों के उपचार से ऊपर रखा है, क्योंकि कोढ़ आज भी न ठीक होने वाला रोग है, इसलिए परमेश्वर ने उसकी चंगाई के लिए अलौकिक व्यवस्था दी। परमेश्वर कहता है, याजक छावनी के बाहर उस मनुष्य को जांचने जाएगा, क्योंकि कोढ़ी मनुष्य छावनी के बाहर तंबू में रहते थे, वे समाज से निकाल दिए जाते थे, और याजक छावनी के बाहर जाए और याजक उस कोढ़ी को देखे, और यदि उसके कोढ़ की व्याधि चंगी हो गई हो तो याजक आज्ञा दे कि शुद्ध ठहराने वाले के लिए 2 शुद्ध और जीवित पक्षी, देवदारू की लकड़ी और लाल रंग का कपड़ा और जुफा, ये सब लिए जाए, और याजक आज्ञा दे कि एक पक्षी बहते हुए जल के ऊपर मिट्टी के पात्र में बलि किया जाए। तब वो जीवता पक्षी को देवदारू की लकड़ी और लाल रंग के कपड़े और जुफा, इन सबों को लेकर एक संग उस पक्षी के लहू में जो बहते हुए जल के ऊपर बलि किया गया है डुबा दे, और कोढ़ से शुद्ध ठहरने वाले पर 7 बार छिड़क कर उसको शुद्ध ठहराए। तब उस जीवित पक्षी को मैदान में छोड़ दे, और शुद्ध ठहरने वाला अपने वस्त्रों को धोए और सब बाल मुड़वाकर जल से स्नान करे, तब वो शुद्ध ठहरेगा, और उसके बाद वो छावनी में आने पाए, परंतु 7 दिन तक अपने डेरे से बाहर ही रहे, और 7वें दिन वो सिर, दाढ़ी और बाहों के सब बाल मुंडाए और सब अंग मुंडन कराए और अपने वस्त्रों को धोए और जल से स्नान करे, तब वो शुद्ध ठहरेगा, और 8वें दिन वो 2 निर्दोष भेड़ के बच्चे और 1 वर्ष की निर्दोष भेड़ की बच्ची और अन्न बलि के लिए तेल से सना हुआ एपा का 3/10 मैदा और लोज भर तेल लाए। लेव व्यवस्था 14:3-10 पद। उसके दोष बलि, पाप बलि और फिर होम बलि या पवित्र करण बलि चढ़ानी होती थी। तब याजक दोष बलि के लहू में से कुछ लेकर शुद्ध ठहरने वाले के दहने कान के सिरे पर और उसके दहने हाथ और दहने पांव के अंगूठों पर लगाए, और याजक उस लोज भर तेल में से कुछ लेकर अपने बाएं हाथ की हथेली पर डाले, और याजक अपने दहने हाथ की उंगली को अपनी बाईं हथेली पर के तेल में डुबाकर उस तेल में से कुछ अपनी उंगली से यहोवा के सन्मुख 7 बार छिड़के, और जो तेल उसकी हथेली पर रह जाएगा, याजक उसमें से कुछ शुद्ध होने वाले के दहने कान के सिरे पर और उसके दहने हाथ और दहने पांव के अंगूठों पर दोष बलि के लहू के ऊपर लगाए। लेव व्यवस्था 14:14-17 पद तक। और इस विधि का पूरा होने पर कौड़ी को वापस समाज में लिया जाता था, और वे एक बार फिर उसे लोगों के बीच रहने दिया जाता था। कोढ़ को उसके उद्गम और फैलाव के भेद के कारण सदा पाप का प्रतीक माना जाता था। हम नहीं जानते कि कोढ़ एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य को कैसे लग जाता है। हम ये भी नहीं जानते किसी मनुष्य को कोढ़ का रोग कैसे लगता है। इसी प्रकार हम पाप के बारे में भी नहीं जानते कि वो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में कैसे आ जाता है, क्योंकि हर मनुष्य ने पाप किया है, इसलिए सब में मृत्यु व्याप्त है। हम नहीं जानते, मनुष्य के लिए कोढ़ एक असाध्य रोग है। आज दवाइयों से हम कोढ़ का रोकथाम कर सकते हैं, परंतु उसको चंगा नहीं कर सकते, वे सिर्फ फैलने से रोका जा सकता है। जहां तक मनुष्य का प्रयास है वो असाध्य है। इसी तरह पाप जहां तक मनुष्य का संबंध है असाध्य है, कोढ़ मृत्युदायक है और पाप की मजदूरी भी मृत्यु है। कोढ़ शरीर के भीतर बढ़ने में धोखेबाज है। सबसे पहले वो तंत्रिकाओं में लगता है और तब किसी मुख्य अंग को ग्रस्त करता, वैसे ही पाप भी धोखे से धीरे धीरे बढ़ता है और मनुष्य की इच्छा शक्ति को नाश कर देता है। कोढ़ के शुद्धिकरण में हम दो पक्षी देखते हैं, एक को बहते हुए जल के बर्तन पर मारकर उसका लहू एक बर्तन में रखना और दूसरे पक्षी को उस लहू और पानी के मिश्रण में डुबाना। मुझे निश्चय है यदि आप ध्यान दें, ये सब चीजें प्रतीकात्मक है। देवदार की लकड़ी का भी एक कारण है, लाल रंग के कपड़े का भी कारण है, जुफा भी अपना स्थान रखता है, पानी मिश्रित लहू का भी एक कारण है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सब यीशु मसीह और उसके बलिदान की ओर संकेत करते हैं। पुराने नियम में ऊपर से नीचे तक लाल रंग के बुने हुए कपड़ों का वर्णन यीशु मसीह की ओर इशारा करता है। यहां कोढ़ी को लाल रंग का कपड़ा लाना था। हमें याद है कि राहाब को अपनी खिड़की से लाल रंग का कपड़ा लटकाने की आज्ञा दी गई थी ताकि जितने भी उस घर में हैं बचाए जाए जब इसराइल की संतान यरीहो को विजय करे। परंतु देवदार की लकड़ी क्रूस की ओर इशारा करती है और वे सब इस तरह क्रूस की ओर देख रहे थे। हो सकता है कि क्रूस देवदार की लकड़ी की ही रहा हो, मुझे नहीं मालूम, और ना ही ये आश्चर्य करने का विषय है। रोमी सिपाही ने जब यीशु की पसली पर भाला मारा था तब खून और पानी निकला था, जो यीशु मसीह के खून से साफ किए जाने की ओर संकेत करता है। उन्होंने जुए को सिरके में डुबाकर उसके मुंह पर लगाया जब वो चिल्लाया था, मैं प्यासा हूं। इसलिए मैं विश्वास करता हूं कि इन सब वस्तुओं का एक प्रतीकात्मक संकेत है। इसलिए जब आप इसे पढ़ते हो तो आत्मा के लिए अपने हृदय को खोलें। मुझे निश्चय है वो आपसे बात करेगा और इन चीजों का महत्व आपको बताएगा। मैं धर्मशास्त्र को बड़ा चढ़ाकर समझाने के पक्ष में नहीं हूं, परंतु मैं ये तो मानता हूं कि उसमें निश्चय ही आत्मिक उपमाएं दी गई हैं। इसलिए मैं ये विषय उन लोगों के लिए छोड़ देता हूं जो ये समझे कि इन बातों के आत्मिक परिप्रेक्ष्य का अधिक ज्ञान है। शुद्ध किए गए मनुष्य को समर्पित करने का विधि यह थी, उसके कान पर अंगूठे और पांव पर लहू लगाने का संकेत है कि वे अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करता है। यही सब हारून के लिए किया गया जब उसको याजक पद के लिए शुद्ध किया गया था। उसके कान अंगूठे और सीधे पांव के अंगूठे पर लहू लगाया, ये कहते हुए कि तुम्हारे कान परमेश्वर की ओर लगे रहे, तुम्हारे हाथ परमेश्वर के कार्य में लगे रहे, तुम्हारे पांव परमेश्वर के मार्ग पर लगे रहे। अपने पापों से केवल शुद्ध होना ही काफी नहीं है, हमें अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करना होगा प्रतिज्ञा के साथ। हमारे कान उसकी आवाज की ओर खुले रहे, हमारे हाथ उसके कार्य करते रहे, हमारे पांव उसके मार्ग पर चलते रहे। और इसी सदृश कोढ़ी मनुष्य की शोधन विधि है और पापी मनुष्य के शुद्धता के नियम है ताकि वो प्रतिज्ञा के साथ परमेश्वर को स्वयं का समर्पण करे। वो आगे कोढ़ से ग्रस्त लोगों के विषय नियमों का उल्लेख करता है। जिस कोढ़ की व्याधि हुई हो और उसके इतने पूंजी न हो कि वो शुद्ध ठहराने की सामग्री को ला सके तो उसके लिए यही व्यवस्था है। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, ले व्यवस्था 14:32-33 पद, और जब तुम अपनी निज भूमि में पहुंचो और उस समय कोढ़ किसी घर में दिखाई दे, शायद किसी प्रकार नमी या फंगस यदि किसी घर में ऐसा हो तब उसको पत्थरों पर से खुरच देना होगा, दोबारा बनाना होगा, और यदि दोबारा दिखाई देती है तब तो घर को तोड़ देना होगा। परंतु यदि दोबारा प्लास्टर करने के बाद वो फिर दिखाई नहीं देती है तब घर को शुद्ध माना जाए और उसमें लौटकर वास किया जा सकता है।